शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, हम बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं। जब हम ये कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। आप सबको लगता है हम सच्चे ब्राह्मण हैं सच्चे ब्राह्मण, या वही देह के हमें नाम पोजीशन याद रहता है, कोई गुप्ता है, कोई शर्मा है, कोई सक्सेना है, कोई वर्मा है, अलग अलग नाम रहते हैं। लेकिन हमें अपनी देह का जिसको सर नेम कहते हैं वो भी एकदम भूल जाए। और पक्का हो जाए मैं बाबा का सच्चा ब्राह्मण बच्चा, ये स्मृति हमारी पक्की हो जाए। मन वचन कर्म की पवित्रता उसका आधार है श्रेष्ठ ऊंची स्मृति। जैसे आप सोए हुए हों, आप ट्रेन में आते हैं, आपका रिजर्वेशन है, आप गहरी नींद में हैं, सोए हुए हैं, टीटी आके पूछता है फलाना, तो आप नींद में भी कहते हैं अरे भाई मैं हूं, हमने सीट बदल ली है। नींद में भी याद रहता है ना मैं कौन। क्या हमें नींद में भी ये याद रहता है मैं श्रेष्ठ परम पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूं? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए हम कहते हैं हमारा पहला नियम है ब्रह्मचर्य और दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। अगर हम वो नियम पालन न करें तो इस योग भट्टी में आ सकते हैं? आ सकते हैं, होता है ना भाई। कम से कम अभी कितने साल वालों की भट्टी है ये, 5 साल से ऊपर वालों की। तो भट्टी के लिए भी हो सकता है कोई ऐसे भी आ गए हों जो साल 2 साल से हों या 6 महीने से हों, लेकिन जो योग का आनंद है, गहराई है, अनुभूतियां हैं, वह हमें तब हो सकती हैं जब हमारा फाउंडेशन पक्का। अगर ब्राह्मण बनने का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य शुद्ध अन्न दैवी गुणों की धारणा प्रतिदिन का क्लास ये 4 पिल्लर हमारे पक्के ना हो तो हम यहां नहीं बैठ सकते। ब्राह्मण बनने के लिए ये जरूरी है। ऐसे ही राज योग का अनुभव करने के लिए, प्रभु मिलन मनाने के लिए प्राप्तियां करने के लिए सबसे पहला आधार है मेरी श्रेष्ठ स्मृति। देह भान एकदम टूट जाए, खत्म हो जाए, मैं सीता हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा हमें कहता है ना, ब्राह्मण कुल भूषण, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। सोते जगते उठते बैठते ये धुन, ये स्मृति पक्की हो। स्मृति माना, स्मृति में दो चीजें हैं, भाव और संकल्प। जब योग में बैठते हैं, आप कहते हैं ना बहन जी कमेंट्री कराइए, कमेंट्री में हम केवल कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन उस भाव में आ जाना मैं शुद्ध आत्मा, ये है भाव। भाव प्लस संकल्प, ये है मेरी स्मृति। जो भाव होगा वही हमारा स्वभाव होगा। गहरा कनेक्शन है। बहुत बार हम व्यवहार में यही कहते रहते हैं, आपने बुरा मान लिया, मेरा ये भाव नहीं था, या आप बुरा नहीं मानना, मेरा थोड़ा स्वभाव ना ऐसे ही बोल देने का, आप बुरा नहीं मानना। जो भाव है वो स्वभाव है। स्वभाव भाव की अभिव्यक्ति है। मेरे अंदर में क्या भाव है, अच्छा या बुरा, बढ़िया या घटिया, उसका प्रिंट आउट है स्वभाव। अंदर में गुस्सा है, ईर्ष्या द्वेष है, प्रिंट आउट, कड़वा बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, फिर उसके आगे तो बहुत ऊंची सीढ़ी है ना, झगड़ा भी कर लेंगे, गाली गलौच भी कर लेंगे। तो मेरा भाव कौन सा है? जब भाव और संकल्प में एक रूपता हो जाती है, मैंने जो संकल्प किया मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, वही मेरा भाव बना, वही मेरी स्मृति बन गई, और फिर वही मेरा चित्त बन गया। ये सूक्ष्म बात है। अब मन की पवित्रता, क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, आप सब बाबा के बच्चे पवित्र हैं, महान हैं। आज के इस कलयुगी संसार में जहां विषय वैतरणी नदी बह रही है, ऐसे गंदे संसार में आप बाबा के बच्चे पवित्र हैं, कमल आसन धारी हैं, लेकिन बाहर की दुनिया का जो वातावरण है, लोग हैं, व्यवहार है, रहन सहन है, उसमें मेरी मनसा, मेरी वाचा, मेरी कर्मणा कैसी है। तो सबसे पहली जो मेहनत कहें, चाहे अभ्यास कहें, वो यही है कि मैं इस देह से एकदम अलग, अभी आप सब बैठे हैं, सब अलर्ट है ना, थके हुए तो नहीं, दो दिन से सुन सुन के थक तो नहीं गए ना, तो थोड़ा अलर्ट होकर बैठिए, एकदम सीधा, कॉपी पेन छोड़ दें, साथ साथ अभ्यास कीजिए और एकदम ये अभ्यास कीजिए, मैं आत्मा यहां मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं और मैं आत्मा एकदम शुद्ध और शांत पवित्र आत्मा, इसलिए मुझ आत्मा का हर संकल्प बाबा संकल्प है। बाबा ने जो कहा है, मुझे क्या देखना है, जो बाबा ने कहा है, मैं आत्मा हूं और आत्मा को देखती हूं। मेरे आस पास, अड़ोस पड़ोस, भाई बंधु, ये सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं एकदम शुद्ध पवित्र हैं। आत्मा के नाते भाई भाई हैं। अच्छी तरह अपने अंदर पक्का करें, बिल्कुल सूक्ष्म आत्मा हूं, अब विचार करें, जब हम स्वयं को सूक्ष्म आत्मा अनुभव करेंगे तो हमारा मन कैसा होगा, हमारा दिल कैसा होगा, हमारा व्यवहार दूसरों से कैसा होगा, क्या ईर्ष्या द्वेष का होगा, बदले की भावना का होगा, तेरा मेरा होगा, अपना पराया होगा। जब मैं आत्मा हूं तो व्यवहार कैसा होगा, सासू बहू का होगा, मेरी सासू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। अभी ये भाव अंदर से खत्म करना है, सासू बहू ये सब भी कौन है, कौन है, आत्मा है या नहीं, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जब तक मेरी दृष्टि ये रहेगी, ये सासू है, ये बहू है, ये भाई है, ये देवर है, ये पड़ोसी है, ये ग्राहक है, तो मेरे मन में शुद्धि पवित्रता नहीं आएगी, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। फिर व्यवहार में हेरा फेरी, ठगी, तेरा मेरा, स्वार्थ, ये सब आएगा। लेकिन मैं आत्मा हूं सिर्फ कहना नहीं है, आत्मा के नाते भाई भाई हैं, और व्यवहार में, व्यवहार में हम क्या हैं? हमने यज्ञ में आकर क्या देखा? बचपन से बाबा के बने, यज्ञवासी जो उस समय भाई बहने थे, वो लौकिक में संबंधी थे, लेकिन कभी ऐसी भासना नहीं आती थी, दिखाई नहीं देता था, कोई बताता था तो मालूम पड़ता था। बहुत से परिवारों के परिवार आए ना, मम्मा की लौकिक मां भी मम्मा को मम्मा कहती थी, बेटी नहीं कहती थी, इतना आत्म अभ्यास था। अगर आपकी बेटी बाबा की सेवा में यहां समर्पित हो जाए, हो सकता है कईयों की हो भी, बेटी या बहन, आप उसको दीदी कहें बहन कहें ऐसा देखने में नहीं आता है। आजकल हमने देखा है बहनें भी समर्पित अगर हो जाती हैं, अगर मां बाप हैं तो उनको मां बाप ही कहती हैं, मम्मी पापा ही कहेंगी जो भी कहती होंगी, और मां बाप भी उसी नजर से देखते हैं, ये हमारी बेटी है। लेकिन ये जो यज्ञ में शुरू में भाई बहने आए, इनसे कभी ये भासना नहीं आई। बाबा की अपनी लौकिक युगल जो थी यशोदा मैया, यशोदा भी बाबा को बाबा ही कहती थी, लौकिक रूप में तो कहने में पति आएगा ना, लेकिन ये देह भान ऐसा टूट गया था जो यशोदा मैया भी बाबा को बाबा कहती थी। ब्रजेंद्रा दादी बाबा के बेटे की बहू थी, तो ससुर का संबंध हुआ ना, वो भी बाबा को बाबा कहती थी। ऐसे बहुत हमारे यज्ञ में एग्जाम्पल है, बाबा के बने तो एकदम आत्मिक अभ्यास में आ गए, ये लगा ही नहीं ये मेरी बहू है, ये ससुर है, ये मां है, ये बेटी है ना, सब एक दूसरे को आत्मा के नाते से देखने लगे और आत्मा के नाते से व्यवहार करने लगे। हम भी बाबा के बने हैं, हमारा व्यवहार किस आधार पर है, कौन से धरातल पर चलता है? संबंध तो संबंध हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहना, उस स्मृति में रहना। आजकल की दुनिया को अगर देखते हैं, जो फैशनेबल दुनिया है, मॉड शॉट दुनिया है, आगे के जमाने में स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती थी, और आजकल, आजकल लेते हैं नहीं लेते हैं? आजकल तो ऐसे ही एक दूसरे का नाम लेते हैं जैसे कोई बच्चों का नाम ले रहे हैं, लेते हैं ना, आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं ना, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये हमसे अच्छे हैं, इन्होंने देह बांध तोड़ दिया है, नहीं ना, स्त्री समझती है ये पति है, ना पति समझता है ये स्त्री है, दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। लेकिन वो उल्टा रूप है, हमें वो नहीं करना है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने उस रूहानी स्वरूप को इमर्ज करने की आवश्यकता है। तो दादियां सुनाया करती थी, रात रात भर बैठकर अभ्यास करते थे। अभी तो हमारे पास ज्ञान की बहुत विशालता है, गहराई है। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ज्ञान की गहराई नहीं थी, ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी। आज तो कितनी बातें हम सुनाते हैं, सुनते हैं, साकार मुरलियां सुनते हैं, अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं, तब तो शुरुआत थी। और शुरुआत का आधार अभ्यास, बस मैं एक बिंदु आत्मा। आजकल तो हम योग में बैठ के पूछते हैं, बहन जी अब आगे और क्या, बस खाली मैं बिंदु आत्मा हूं, फिर तो हम बोर हो जाते हैं। अरे ये क्या, बोर हो जाते हैं, सुस्ती आने लग जाती है, क्योंकि केवल कहते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन जब पवित्रता की वो शक्ति आ जाए, वो सच्चा स्वरूप इमर्ज हो जाए, तो आपका आया हुआ आलस भी भाग जाएगा। अगर ये गहन एक बार अनुभूति हो जाए, सचमुच मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, इस पर हम सबको अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब हमारी मनसा की पवित्रता होगी। मनसा शुद्ध और पवित्र है तो हमारी दृष्टि कैसी होगी, दृष्टि कैसी होगी, स्वतः ही शुद्ध पवित्र हो जाएगी। शुद्ध पवित्र दृष्टि उसको दुनिया का आकर्षण खींचेगा, खींचेगा आकर्षण। लेकिन अगर आज हम पूछें, हम में से कितने भाई बहन हैं जो टीवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, हाथ नहीं उठ पाती हूं क्योंकि सारे ही हाथ उठ जाएंगे, मैं समझती हूं, जो टीवी देखते हैं, पीस ऑफ माइंड की बात छोड़िए, उसके अलावा भी देखते हैं, आप इसको क्या समझते हैं, ये हमारी मनसा की शुद्धता है? योग में बैठते हैं, हमारा अभ्यास ये है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं, यही अभ्यास है ना। और टीवी में क्या है, टीवी में क्या है, पूरा देह का आकर्षण, देह का प्रदर्शन। तो ये तो दोनों विरोधाभास हो गए। अभ्यास है मैं आत्मा हूं, देह नहीं, और मेरी जो आंखें हैं, दृष्टि है, इसको भोजन कौन सा मिल रहा है। हम कहें हम बाबा के बच्चे हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं या खाते हैं, कोई भाई बहने अभी भी ऐसे हैं जो प्याज लहसुन खाते हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं बहन जी, जब से बाबा के बने हैं तो हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया है। लेकिन कोई कहे कि हम जब सेंटर पर आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन घर में जाके, या आजकल एक जैन फूड निकला है, कोई कोई बाहर घूमने जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं आपने क्या किया, कहते बहन जी 15 दिन घूमने गए थे, फिर क्या करते, बासी खाना क्या खाते, जैन फूड का पैक ले लिया। एक बार मैंने एक को बुला के पूछा कि ये जैन फूड क्या है, जैन फूड में भी जो मसाले डलते हैं उनमें प्याज लहसुन का एसेंस होता है, आप जाकर चाहे देख लेना, चेक कर लेना। तो अब बताइए मेरे अन्न की शुद्धता रही, मैंने जैन फूड खाया। हमने अपने योगी जीवन को चलाने के लिए वैसाखियों का सहारा ले लिया है। वैसाखी समझते हैं ना, किसी किसी की टांगे दोनों नहीं चलती हैं, तो डॉक्टर उसको वो दो लकड़ी देता, वो बेचारा उसको यहां कंधे के नीचे लगा के चलता है। आजकल हमने ये वैसाखियों का सहारा ले लिया। बहन जी, हम तो कहीं जाते हैं ना, बस बाहर की आइसक्रीम खा लेते हैं, वो मशीन मेड है। आजकल तो सब कुछ मशीन मेड है, खाओ फिर मौज करो, ब्रेड भी खाओ, पापड़ भी खाओ, सब कुछ। कितना हम ढीले हो गए, तो मेरी पवित्रता क्या रहेगी? तो केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, पवित्रता माना मेरे मन का कोई आकर्षण। क्या मैं आइसक्रीम के बिना रह नहीं सकती? आकर्षण है ना, आइसक्रीम खानी है, आकर्षण है ना। आकर्षण को क्या मानेंगे, विकार या निर्विकार, क्या समझेंगे? आकर्षण को क्या कहेंगे? ये भी तो विकार है। विकार माना विकृत रूप, विकार माना अधीनता, ये भी कर्म इंद्रियों की अधीनता है ना। पवित्रता माना कर्म इंद्रियों का तप। मेरी कोई भी कर्म इंद्री मुझे खींच नहीं सकती। कोई कोई कहते हैं बहन जी, धार्मिक सीरियल आते हैं, कोई रामायण आया, कुछ आया, वो तो देख सकते हैं ना। बाबा क्या कहता है, रामायण, महाभारत, भागवत, ये सब क्या है? बाबा तो कहता है, बच्चे वो भी नावल है, है ये नावल या नहीं है बता दो। हम लोग बचपन से ज्ञान में आ गए तो भक्ति या दुनियादारी की वो बातें नहीं देखी। एक बार मन में आया, भागवत के लिए लोग बहुत पाठ भी रखते हैं और भागवत घरों में पढ़ते भी हैं और कई उदाहरण भी लोग देते हैं, चलो मैं भी भागवत पढ़ लूं, भागवत तो धार्मिक किताब है। दो चार पन्ने पढ़े, पढ़ने के बाद लगा ये तो पूरा ही नावल है, सिर्फ एक्टर ही बदले हुए हैं। जो दुनिया में दिखाते हैं वो राधा कृष्ण के ऊपर सारा दिखा दिया। और बाबा कहता है ये सब होता ही नहीं, वहां विकारी दृष्टि होगी। बाबा कहता है ये सब तो है ही झूठ, मनगढ़ंत है, देखो व्यास ने क्या क्या बैठ के लिखा है। तो आप बताइए, अगर सीरियल आए, भागवत या रामायण देखना चाहिए, क्या विचार है? जो कहते हैं देखना चाहिए, हाथ उठाना जरा। अब क्लास सुन के तो कहेंगे नहीं देखना चाहिए। जिन दिनों रामायण आ रही थी टीवी में, तो हमें तो ध्यान नहीं होता था, हम लोग तो टीवी देखते नहीं। तो एक बार संडे के दिन ही हम किसी के घर मिलने चले गए और हमें मालूम नहीं था, वो टाइम ही ऐसा था शायद रामायण का। तो जिनके घर में गए, कहने लगे, दीदी आप तो बहुत ज्ञान सुनाते हैं, रामायण का सीरियल चल रहा है, आप भी थोड़ा बैठ के देख लो। मैंने कहा, भाई हम तो कभी देखते ही नहीं, ना पहले का पता ना आगे का पता। दीदी आप देखो तो सही। आपको मैं सच्ची बात बताती हूँ, मैं बैठी, लेकिन मैं दो मिनट के बाद तीसरा मिनट नहीं बैठ सकी। मैंने कहा, भाई कोई बात नहीं, दोबारा मिलने आएंगे, सेवा के लिए गए थे। लेकिन वो सब देखा, उनका डायलॉग देखा, उनका पोशाक देखा, मैंने कहा ये तो पूरा ही देखो क्या है। हमें तो बाबा कहता है देह से एकदम डिटैच हो जाओ। पूरी रामायण की कहानी क्या है? बस एक ककई ने कुछ बोला, यही है ना। ककई क्या कही, किसने कही, क्यों कही, कब कही, कहां कही, कह 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 वॉमिट करते रहते हैं। तेरे लिए उसने ऐसा बोला, बस उस पर सारी रामायण बन गई। तो क्या हम बाबा के बच्चे ऐसा सीरियल देख सकते हैं? एक्सक्यूज अपने को दे लेते हैं, अरे रामायणी तो है वो राम, हम वो राम और सीता को मानते हैं जिस राम की सीता चोरी हो गई, क्या हम उस राम को मानते हैं? हम तो उस राम को ही नहीं मानते हैं जिसकी सीता चोरी हो गई, हम तो उस राम को मानते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्त्री चोरी होना तो कोई मर्यादा नहीं है, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो कई बार हम अपने मन को ऐसे छोटे छोटे वैसाखियां लगाकर, सहारे लगाकर, अपने दिल का जो आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित होते रहते हैं, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हम एकदम पवित्र हैं। नो डाउट, आप सब बाबा के बच्चे महान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पवित्र बच्चे हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति जब तक ऊंची नहीं उठी तो हमारा योग कैसे लगेगा? अब मैंने जो सीरियल देखा है, योग में बैठूंगी तो वो सामने आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो मानसिक पवित्रता पर हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए। कोई भी दैहिक आकर्षण, भौतिक आकर्षण मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। रामायण में है, दैहिक दैविक भौतिक तापा चहु और कहीं नहीं व्यापा। दैहिक, देह का कोई भी रोग शोक वहां नहीं है। दैहिक दैविक, जिसको अपन कहते हैं दैवी प्रकोप, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, इस प्रकार का भी कुछ नहीं है। और भौतिक, आजकल जो भौतिक कमी हमारे जीवन में कोई ना कोई रह जाती है, तुलना करते रहते हैं, इसके पास गाड़ी है तो इसके पास स्कूटर है, मेरे पास ये है, किसी भी प्रकार की कमी वहां नहीं है। तो ये दैहिक दैविक भौतिक कोई भी प्रकार की वस्तु का आकर्षण मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। बरसात का मौसम है तो पकौड़ा खींचेगा, बरसात हो रही है तो चलो एक कप चाय कॉफी ही पी लेते हैं, आकर्षण पी चुकी हूं पर पी लेते हैं। तो क्या मैंने अपनी कर्म इंद्रियों का तप किया है? मेरी कोई भी कर्म इंद्री मुझे नहीं खींच सकती। बाबा ने तो यहां तक कहा, भोजन भी करते हैं, ये शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है, तो इस गाड़ी के लिए पेट्रोल तो चाहिए ना, फ्यूल तो चाहिए। लेकिन हम उस भोजन में भी आप देखो कितना रस लेते, बाबा नहीं याद रहता, सबका अनुभव है। थाली लेते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन के रस में डूब जाते हैं। बाबा की याद में नहीं डूबते हैं। अब मैंने भोजन के रस में डूबकर भोजन किया, अब मेरी वृत्तियां कैसी होंगी, दृष्टि कैसी होगी, मेरा व्यवहार कैसा होगा, उसमें भी आकर्षण विकर्षण ये सब आएंगे। वाणी कैसी होगी, मन की शुद्धता, उसके बाद हमारी वाणी की शुद्धता, पवित्रता, वाणी मीठी हो। बाबा तो हमें जरूर मीठे मीठे बच्चे कहता है, अपने दिल से पूछें सचमुच मैं मीठी बच्ची हूं, बाबा कहता है मीठे बच्चे, मैं कौन हूं? कभी किया है चेक? मैं कौन? मैं मीठी बच्ची हूं, कड़वी हूं, कसैली हूं, खट्टी हूं, तीखी हूं? आप निकालो कितना प्रकार निकलेगी। जरा चटपटी हूं, अटपटी हूं, कटपटी हूं, है ना? इतने प्रकार के हम या नहीं है? मेरी वाणी कैसी है? होनी कैसी चाहिए? वाणी में केवल मधुरता नहीं, बहुत से लोग आर्टिफिशियल भी फिर बहुत मीठा बोलते हैं, वो भी जरा कानों को फिर बाद में कुरेदने लग जाता है, अखरने लग जाता है कि ये व्यक्ति इतना मीठा क्यों बोल रहा है। आर्टिफिशियल मीठा बोलते हैं, समझ में आता है ना? आर्टिफिशियल मीठा नहीं बनना है, अंदर से हम मीठे बने। अंदर से मीठे माना अंदर बाहर साफ सच्चे, ऐसे नहीं ऊपर से तो मैं मीठा मीठा बोल रही हूं, अंदर से दूसरे की जड़ काट रहे हैं, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से तो मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन दिल से किसी को सम्मान रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे? मीठा कहेंगे? मैंने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया किसी को, मुझे कौन देगा? मैंने बीज ही नहीं बोया रिस्पेक्ट देने का। कोई भी बात है हंसी में उड़ा दी, कोई बड़ा है छोटा है, चलो छोटा है चाहे कैसा भी है, उसको भी हम प्यार से बोलें, आशीर्वाद के बोल बोलें, खुशी देने वाले बोल बोलें, प्रेरणा देने वाले बोल बोलें ना। बड़ा छोटा सब एक ही लाइन में, अगर आज मूड सही नहीं है तो बड़ा छोटा जो आएगा फिर वो भी आपस में कहते हैं अरे भाई जरा आज बच के रहना, आज जरा मूड गर्म है। कहते हैं नहीं कहते हो? देखते हुए भी नहीं देखते हैं, कहते हैं चलो कल मिल लेंगे, कोई बात नहीं आज आए तो थे काम से, अब कल मिलेंगे, आज बहन जी का मूड ठीक नहीं है। तो अगर मेरी वाणी इस प्रकार की है तो आप इसको क्या कहेंगे? मीठी वाणी, निर्विकारी वाणी, देवताओं की वाणी कैसी होगी? पहली बात, अगर आप कभी भी देवताओं के चित्र देखें, आपने कभी उन्हें बात करते हुए देखा है? देखा है? चाहे वो राधे कृष्ण के हों, लक्ष्मी नारायण के हों, सीता राम के हों, देवी देवताओं के हों, उनको आप रास करते हुए खेलते हुए जरूर देखेंगे लेकिन बोलते हुए नहीं देखेंगे। अब देखिए आज का मनुष्य का जीवन, चाहे कलयुगी चाहे संगम युगी, हम लोग एक दूसरे से रास तो नहीं करते हैं। अगर आपको कहेंगे रास करो तो जो थोड़े यंग होंगे वो तो फिर भी शायद थोड़ा नाच लेंगे, वो भी नाचेंगे रास नहीं करेंगे। और दूसरे तो ये कहेंगे हम तो बुढ़े हो गए बहन जी, खड़े ही नहीं हो सकते तो रास कहां से करेंगे। हम बोलते हैं रास नहीं कर सकते हैं। हम बोलते बहुत ज्यादा हैं इसलिए एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है। और आज की टेक्निक ने तो हमें इतना दूर कर दिया है, हम एक दूसरे से फोन पर हेलो भी नहीं करते हैं। कोई बात होगी काम होगा कहेंगे एसएमएस कर दो या व्हाट्सएप भेज दो, चलो हेलो करने से भी गए। आप देख लीजिए कितनी वैल्यू है आज। जहां मनुष्य अधीन है ये विकार है। विकार हमें वशीभूत करते हैं, अधीन करते हैं। आप बाबा के घर में आए हैं, भट्टी में आए हैं, चाहे आप बाबा के प्रोग्राम में आए, आप सवेरे अमृत वेला योग करने आते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लासेस करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं आप? अमृत वेला भी योग करेंगे ना, फिर देखो सब खड़े हो जाते हैं। आपने योग कर लिया ना, फिर खड़े क्यों होते हैं? क्यों खड़े होते हैं भाई बताओ? कहते हैं दृष्टि लेनी है। दृष्टि लेने के लिए खड़े होते हो ना। मुरली सुनने के बाद भी चाहे गीत बहुत अच्छा चला देते हैं भाई, उस समय कोई कोई नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, लेकिन सब खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? दृष्टि, आत्मा की प्यास नाचने से नहीं, बोलने से नहीं, लेन देन से नहीं, लेकिन दृष्टि से पूछती है। इसलिए आज भी बाबा की मुरली में था ना, बाबा आकर बच्चों को निहाल करता है, माना? याद है किसी को क्या निहाल करना माना? स्वर्ग का मालिक। वैसे भी दो लोग आपस में मिलते हैं, क्या कहते हैं? कहते भाई कैसे हैं? कहते जी बस आपकी दया दृष्टि है। कहते हैं नहीं कहते हैं ऐसे? भगवान को भी क्या कहते हैं? हे भगवान बस रहम करना, कृपा करना। बोलने का सवाल कहाँ है, लेकिन हम तो समझते हैं चुप रहना मजबूरी है, और बोलना अगर अभी कह देंगे ना, अच्छा चलो आप सबका क्लास पूरा हुआ, छुट्टी, आज आप रिलैक्स, अभी देखो सब बोलना चैन 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 चैन। कभी नहीं हम सोचते हैं अच्छा चलो आज रिलैक्सेशन के लिए मिला है। रिलैक्स आप कैसे होंगे? जब आप मौन में रहेंगे। अभी आ रहा है ना, कल गुरु पूर्णिमा है, सावन मास शुरू हो गया। भक्ति में भी, भक्ति के हिसाब से चौमासा है, लोग भक्ति करेंगे, खूब पाठ पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, इसी में सब त्योहार आएंगे। और आप बाबा के बच्चे क्या करेंगे? भक्ति तो छूट गई, माला तो फेरनी नहीं, फिर क्या करेंगे? व्रत भी नहीं रखना है, फिर क्या करेंगे? कोई बता सकता है क्या करेंगे? कितना अच्छा हो अगर हम बाबा के बच्चे, कम से कम जो भट्टी में भाई बहने आए हैं, ये सोच लें जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो दिवाली आ जाएगी, 3 महीना प्रतिदिन मुझे 8 घंटा मौन में रहना है, बाबा की मुरलियों का अध्ययन करना है, चाहे एक मुरली को 10 बार पढ़ो, चाहे 10 मुरलियां पढ़ो। कौन कौन कर सकता है? 3 महीना देख लो हाथ नहीं उठते हैं, कितने कम हाथ उठे हैं। प्राप्ति हम चाहते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आप कहेंगे 8 घंटा मौन तो मुश्किल है बहन जी, हम तो धंधा करते हैं। आप इसको सेट कर लीजिए। आप सवेरे 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 5 से 8-9 बजे तक मुझे मौन में रहना है। दुकान पर तो 9-10 बजे जाएंगे ना, ना कि सवेरे उठ के हल्ला करो, मेरा टावल कहाँ है, मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं, इतना बोलना शुरू कर देते हैं। 4 घंटा सवेरे मौन में रहिए, ऐसे ही शाम के समय मुझे 5 से 10, 6 से 10, 10 बजे मोस्टली आप सोते होंगे, ये 4 घंटा 5 घंटा मौन में रहना है। पर मौन माना टीवी खोल के मत बैठ जाना कि मेरा तो मौन है बस और मैं टीवी देख रही हूँ। पीस ऑफ माइंड भी नहीं देखना। कई फिर आके प्रश्न पूछते हैं, बहन जी वो पीस ऑफ माइंड में वो योग आता है ना शाम का, हम तो उसी के सामने बैठ जाते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैं पूछती हूँ आप सबसे, पीस ऑफ माइंड में मान लीजिए योग अमृत वेला आ रहा है या शाम का योग आ रहा है, वो केवल एक ग्लैमर है, लाइट्स हैं उसका, वो घूम रही हैं लाइट्स, आपका योग वहां लगा है या बाबा से लगा है? योग कहाँ लगाना था और आप कहाँ लगा के बैठे हैं? बुद्धि ऊपर जानी थी, योग में बुद्धि मन बुद्धि कहाँ जाता है, और अब पीस ऑफ माइंड में मन बुद्धि कहाँ जाता है? मीठे भाई बहनों, ऐसे भोले न बनो, क्योंकि बाबा ने कहा है माया भी उसी रूप में आएगी, ये भी माया है, जो रूप आपको प्यारा है। आपको क्या प्यारा है? बाबा। आप क्या देखना चाहते हैं? बाबा। आप क्या सुनना चाहते हैं? बाबा की मुरली। बहन जी हमने सवेरे सवेरे टीवी खोला, बाबा की मुरली सुन ली। कितने अच्छे हो आप, बहन जी से भी अच्छे। बाबा की मुरली सुन ली, अब टीवी में ही योग भी लगा लिया, फिर टीवी में ही भोग भी खा लिया, फिर टीवी में ही स्वर्ग में भी चले गए। ऐसे भोले हम बाबा के बच्चे ना बने। ये माया का आकर्षण है, ये माया का रूप है। पीस ऑफ माइंड दुनिया वालों के लिए है या उन बुद्धों के लिए है जो बाबा के बच्चे सालों से हैं पर अब बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, तो चलो वो बेचारे को फिर भी उसका सहारा है। मैं उठूं बैठूं, बाबा का स्थान बनाऊं, बाबा के घर में जाऊं, बाबा को याद करूं, बाबा की मुरली सुनूं। पावर कैसे मिलेगी, शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति तब मिलेगी जब मुरली सेंटर पे जाके सुनूंगी। आजकल तो बहन जी एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पे मुरली आ जाती है। व्हाट्सएप पे बाबा नहीं आता क्या? व्हाट्सएप पे शक्तियां नहीं आती क्या? फिर कहते हैं योग नहीं लगता, योग कैसे लगाएं? कैसे लगेगा? आप तो प्रकृति के साधनों के अधीन हैं। ये अधीनता है, हम उसको अधीनता ही नहीं समझ रहे, हम उसके वशीभूत हैं। तो मेरी वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता, जब मैं बाबा के महावाक्य सुनूं और नोट करूं, आज मुझे दिन भर कौन सी बात को धारण करना है, तो 3 मास बात चली थी ये, जुलाई का आज 8 तारीख तो हो गया, गए 8 दिन, 1 हफ्ता तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना 8 घंटा मौन में रहेंगे और सामर्थ्य अनुसार दिन में 3-4 बार मुरली पढ़ेंगे। कौन कौन कर सकता है? अब हिम्मत करो, कमजोर ना बनो, करेंगे तो पाएंगे। मौसम अनुसार, साइंस अनुसार भी बरसात के दिनों में खाना हल्का चाहिए। अब हम भक्तों की तरह उपवास नहीं रखते हैं पर हल्का खाना खाते हैं, चलो 2 वक्त खाया बस, फिर बाबा को याद करेंगे। ज्यादा खाएंगे ना तो भी योग नहीं लगेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले अगर देवता बनना है, अगर बाबा से शक्ति लेनी है, मुझे ये 3 महीना 8 घंटे मौन रखना है। कोई भाई बहन ये प्रयोग करें, और कितना सहज है, 4-4 घंटे करके करना। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कोई कहे मेरे तो सवेरे ही 6 बजे से ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, शाम को आके करो। किसी की दोपहर से ड्यूटी है, वो सवेरे मौन करे। लेकिन मुझे देवता बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, नर श्री नारायण, नारी श्री श्री लक्ष्मी, तो कुछ पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे, या यूं ही आ जाएंगे हम सत्युग में। आज की दुनिया में आकर्षण तो बहुत है, अच्छे अच्छे कपड़े चाहे यहीं पहन लीजिए, पूरा फैशन कर लीजिए, सत्युग में नहीं आएंगे। सत्युग में हम तब आएंगे जब मेरी स्मृति श्रेष्ठ और बोल वरदानी, मैं एकदम अंतर्मुखी आत्मा और दृष्टि भाई भाई की, और भावना सर्व के लिए शुभ भाव। ऐसे नहीं मैंने 1 घंटा शुभ भावना का दान दिया, 23 घंटे क्या किया। हमें ये ना कहना पड़े नहीं मेरा भाव तो ऐसा नहीं था। कंप्यूटर एज है, जो कंप्यूटर में फीड करेंगे वही प्रिंट आउट आएगा। आपके अंदर जो है वही आपके बोल होंगे, वही प्रिंट आउट आएगा। ये बोल प्रिंट आउट है, ये दृष्टि प्रिंट आउट है, व्यवहार प्रिंट आउट है। मेरा समय पर चिंतन में जा रहा है, तेरे मेरे में जा रहा है, तो ना स्वार्थ हो ना पर चिंतन हो। लेकिन राज योगी बनने के अब जो 4 पिलर हैं, स्मृति, दृष्टि, बोल और भावना, इन 4 को चेक कर। अब इस आसन पर बैठो, श्रेष्ठ स्मृति, भाई भाई की दृष्टि, ज्ञान युक्त वरदानी बोल और सर्व के लिए शुभ भावना, तब समझेंगे मनसा वाचा कर्मणा मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न आत्मा। अंतर्मुखता का इस पर आसन बिछाइए। बताया ना, देवताएं बोलते नहीं हैं, रास करते हैं। रास करना माना, रास माना समझना, रास माना मिलना। कहते हैं ना, ये बात मुझे रास नहीं आई, माना इतनी भाई नहीं, अंदर में ठीक नहीं लगी। तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर स्थिति जो आई है ये चली जाएगी। मुझे अपना मौन में शांति में रहना है, ये रास करनी है। सवेरे भी मुरली पूरी होती है ना, भले आप दादी से दृष्टि लेते हैं, बाहर मुखी ना हो, कोई तो एकदम आके जोर से नाचने लगते हैं, जोर से था, हल्के हल्के बजाओ, क्यों नहीं बजाओ, खुशी में भी आना जरूरी है, हल्की हल्की ताली भी बजाओ, हल्का हल्का बेशक झूमो भी। लेकिन कलयुगी लोगों की तरह हम यूं यूं नाचे नहीं, ये ब्राह्मण की एक्टिविटी नहीं है। खुशी की अभिव्यक्ति दिव्य हो। देवताएं कैसे झूमते हैं, देवताओं की रास कैसे होती है। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए, उस जमाने में साक्षात्कार का पार्ट बहुत था। धीरे धीरे आजकल तो साक्षात्कार का पार्ट बंद है, क्योंकि आत्माओं के अपने संस्कार मिक्स हो जाते हैं, उसको समझने के लिए भी शक्ति चाहिए, और कोई कोई फिर हर घड़ी साक्षात्कार में रहते। तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो खेल पाल है। लेकिन शुरू शुरू में साक्षात्कार भाई बहनों को बहुत होते थे, और बाबा जो साक्षात्कार कराते थे, भाई बहन साक्षात्कार करते थे, वो जो ऊपर सूक्ष्म वतन में ट्रांस में देखते थे, वैसी ही एक्टिविटी उनकी यहां स्थूल में चलती थी। किसी को साक्षात्कार हो रहा है कि वो कृष्ण के साथ रास कर रही है, तो जैसे उसने वहां कृष्ण का हाथ पकड़ा, यहां तो कृष्ण नहीं है, लेकिन जो दूसरा होता है उसका हाथ पकड़ के ऐसा हल्का हल्का। तो बाबा ये भी सिखाते थे, बच्चे रास कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि धरती को हम हिला दें, देवताओं की रास ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं कि पूरे शरीर को हम इतना झटका लगा दें, रास रूहानियत में रहकर भाव विभोर होकर। जिन्होंने भक्ति की होगी ना, उनको मालूम है जब भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं तो आप बैठे बैठे भी कैसे करते रहते हैं, कोई भी भजन चलता है, गीत चलता है, भगत एक अच्छा भक्त झूमता रहता है। ये अनुभव है, हमने मुरली सुनी, दादी जी दृष्टि दे रहे हैं, गीत चल रहा है, और हम वो मुरली की मस्ती में, बाबा की गीत की मस्ती में, जो नाचने लग जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं गीत क्या चल रहा है, वो तो केवल म्यूजिक की थाप पर बस थिरकते हैं। थिरकना ये कलयुग है, झूमना अव्यक्त रास करना। तब कहेंगे अनुभूति, अनुभव, नहीं तो हमारा वही मुरली इतनी अच्छी सुनी, पॉइंट भूल गए, दृष्टि मिली, शक्ति खत्म हो गई। तो मौन में रहना है। यूं तो आप भट्टी में हैं, आप सब अवश्य मौन में होंगे, अभी और थोड़ा फुल अटेंशन यहां दीजिए, भीतर जाइए। जितनी मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है, मुझे बाहरी वातावरण आकर्षित करेगा ही नहीं। भोजन भी करें तो, लास्ट में आपको एक छोटी सी बात बताती हूं, बाबा की याद में एक एक ग्रास को 36 बार गिन के चबा के खाइए। अभी भी आपके पास 2 दिन पड़े हैं। एक तो बाबा की याद रहेगी, दूसरा आपके 50% रोग इसी से ठीक हो जाएंगे अगर आप 36 बार चबाकर भोजन खाएं। डालिए, और गारंटी है ये आपको, ये गारंटी है। हम खाना कैसे खाते हैं, बस डाला, 2 बार इधर 2 बार इधर घटक गया, पता ही नहीं कितना गया, ये भी नहीं पता। कोई कहता रहे ये चीज बहुत अच्छा, थोड़ी फिर मेरे लिए और ले आना, मैं देखूं तो सही। बाबा की याद में शांति में रहकर भोजन करके देखिए। ये तो कर सकते हैं या ये भी मुश्किल है? मौन में रहना मुश्किल है, शांति में 36 बार चबाकर भोजन खाना ये आसान है या मुश्किल है? जो कहते हैं आसान है हाथ उठा। तो 3 महीना आप ये पुरुषार्थ अवश्य कीजिए, मौन और भोजन। और कोई कहते हैं, हमारे कोई कोई भाई बहन मुझे बाद में आके, बहन जी हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है। अगर आपके पास खाने का समय नहीं है तो भाई बहनों बुरा नहीं मानना, आप खाना खाओ ही नहीं, खाने की आवश्यकता ही नहीं है अगर आपके पास समय नहीं है। खाना ही तब खाना है जब समय हो, नहीं है तो मत खाइए। देखिए फिर समय निकलता है या नहीं निकलता है। ये हमने अपने अंदर एक स्वभाव बना लिया है, जल्दी जल्दी डालो, जल्दी जल्दी खाना है, फिर चाहे इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर बातें करते रहेंगे। नहीं, बहुत शांति से, प्रेम से, बाबा की याद में बाबा को साथी बनाकर शांति में रहकर भोजन खाना भी प्रूफ है कि मेरे अंदर कितनी पवित्रता की शक्ति है। हमने मम्मा बाबा को भोजन खाते हुए देखा है। आप एक बाबा का चित्र यहां भी लगा हुआ होगा दादीज मीटिंग हॉल में, बाबा खा रहे हैं, बस ऐसा अपना थाली की ओर ध्यान है बस। मम्मा बाबा कभी इधर उधर ऐसा नहीं देखते हैं, ऐसा पूरा बाबा की याद। और हमारे तो एक सेकंड भी ये नेत्र जो हैं स्थिर ही नहीं होते, या तो खुलते ही नहीं है और खोलने की कोशिश करते हैं तो बस। जितना भोजन शांति से ग्रहण करेंगे उतना आपका योग बाबा से लगेगा। तो चलें बाबा के पास। भोजन का गहरा संबंध है मन से। शुद्ध भोजन तो खाते हैं, प्याज लहसुन तो छोड़ दिया, लेकिन सात्विक भोजन, बाबा कहते हैं बच्चे याद द्वारा मैं तुम्हें निरोगी बनाता हूं, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि हम बाबा के बच्चे रोगी होते रहते। पक्का करके यहां से जाइए, मैं बाबा का बच्चा अब सदा निरोगी रहूंगा, मेरा सुप्रीम सर्जन शिव बाबा है। इसका मतलब ये नहीं आप कोई गोली खाते हैं तो उसको आज छोड़ दें, क्या नहीं शिव बाबा सुप्रीम सर्जन है। दवाई अपनी खाइए लेकिन दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा में तन और मन से शक्ति भरती जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब चलें बाबा के पास, चलें तो बैठो सीधा होकर। अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में आत्मा शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मुझ आत्मा का ये ब्राह्मण जन्म ब्रह्मा मुख द्वारा अर्थात पवित्रता के बल से मिला हुआ नया जीवन नया अलौकिक जन्म है। मुझ पवित्र ब्राह्मण आत्मा के अलौकिक माता पिता पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा अलौकिक मम्मा और बाबा मुझ आत्मा के अलौकिक माता पिता है। संगम युग पर ही केवल अलौकिक माता पिता मिलते हैं। बच्चों की अलौकिक पालना ज्ञान योग गुणों की शक्तियों द्वारा करते हैं। सचमुच अलौकिक माता पिता ने आत्मा की ज्योति जगाई, आत्म स्वरूप की समृद्धि दिलाई, मुझ आत्मा को अशरीरी बना दिया, अलौकिक माता पिता ने अलौकिक शिक्षा देकर मनुष्य से देव बनने के योग्य बना दिया। महसूस करें अलौकिक माता पिता मम्मा बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देख देकर एकदम पावन पवित्र श्रेष्ठ महान आत्मा बना रहे। मन बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें, और मम्मा बाबा की सूक्ष्म दृष्टि महसूस करे मुझ आत्मा पर आ रही। बहुत स्नेह में शक्तिशाली दृष्टि है मम्मा बाबा की। मम्मा बाबा की दृष्टि प्राप्त करते हुए मुझ आत्मा का मन बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में कितनी सुंदर अनुभूति है। मम्मा बाबा के हाथ मुझ आत्मा का मन बुद्धि रूपी हाथ है। वह मुझ आत्मा का भाग्य है। कल्प में एक ही बार और संगम युग की ये सुहानी घड़ी जो अलौकिक माता पिता से अलौकिक मिलन हो रहा है। और मैं आत्मा एकदम पावन पुण्य आत्मा बन गई। ये अलौकिक माता पिता कितने कल्याणकारी हैं। निस्वार्थ जो मुझ आत्मा के मन बुद्धि रूपी हाथ को पारलौकिक सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा के हाथ में दे रहे। अलौकिक माता पिता यही शिक्षा दे रहे हैं बच्चे पारलौकिक ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा में मन बुद्धि को लगाओ। वही शक्ति दाता दिव्य बुद्धि दाता भाग्य विधाता है। आज तो मुझ आत्मा के भाग्य की लॉटरी खुल गई है। मैं भाग्य विधाता दिव्य बुद्धि दाता सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार पारलौकिक माता पिता के सन्मुख उस ईश्वर प्रभु सतगुरु के एकदम करीब मैं अति सूक्ष्म आत्मा सतगुरु की असीम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही है। एकाग्रचित होकर सतगुरु की इस असीम अथाह कृपा का आशीर्वाद का अनुभव करें। मुझ आत्मा के सर्वस्व ये पारलौकिक माता पिता सत्य शिक्षक सतगुरु शिव बाबा है। मैं आत्मा एकदम परलौकिक माता पिता के समीप उसके सानिध्य में अनुभव करें।
सितारे यूं ही जगमगाते रहे, सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल, स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल, वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा, रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा, शक्तियों से श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से श्रृंगार करते रहो, स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना, अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
सत्य माता पिता सतगुरु की संतान, मैं आत्मा सतगुरु का सानिध्य सामिप्य पाकर धन्य धन्य हो गई। बाबा मुझ आत्मा के जीवन में ये श्रेष्ठ घड़ियां हैं, जो इतना सहज सतगुरु बाबा से मिलन मनाकर शक्तियों से भरपूर हो रही, इसी शक्तिशाली स्नेहमयी स्वरूप में सत्य मात पिता सतगुरु के संग पूरे विश्व को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को शांति पवित्रता का साकाश थे। पावरफुल स्थिति में बैठे, नेत्र खुले रखे, महसूस करें मैं सत्य मात पिता सत्य गुरु के करीब एकदम समीप, पद्मा पद्म भाग्यशाली मैं आज, वह मेरा भाग्य। अपने प्यारे मात पिता सतगुरु के संग विश्व कल्याणकारी बनकर पूरे विश्व को, प्रकृति को शांति पवित्रता का योगदान दे रही। अपना अपना राइट हैंड वरदानी मुद्रा में ऊपर उठाएं और महसूस करें मैं पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को शक्तियों का दान, सत्य मात पिता के संग दे रही। शक्तिशाली वरदानी मूरत बनकर बैठे, धीरे धीरे वरदानी हाथ नीचे ले आए और पारलौकिक माता पिता का असीम स्नेह, सतगुरु के अथाह वरदान स्वयं प्राप्त करें, स्वयं को भरपूर करें। मैं आत्मा एकदम वरदानों से भरपूर, पवित्र, शुद्ध, संतुष्ट आत्मा